ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 28 श्लोक छ। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टि विकल्पना। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टि विकल्पना। माता जी, माता माता जी, शब्दार्थ नमः नमस्कार तुभ्यं आपको, भगवते भगवान को, ब्रह्मणे परम सत्य को, परमात्मने परमात्मा को, न नहीं यत्र जिसमें, श्रूयते सुना जाता है, माया माया भौतिक शक्ति, लोक इस जगत की, सृष्टि सृष्टि, विकल्पना व्यवस्था करती है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के विनय शिष्यों द्वारा। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर श्रूयते शब्द सार्थक है। श्रुति या वैदिक साहित्य या तो साक्षात भगवान या उनके प्रबुद्ध प्रतिनिधियों के प्रामाणिक कथनों से युक्त है, इसलिए न तो भगवान न ही मान्य आध्यात्मिक अधिकारी जन यह कभी कहेंगे कि भगवान या परम सत्य में माया का दोष है। श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं, यहाँ पर ब्रह्मणे शब्द बतलाता है कि भगवान स्वयं में पूर्ण हैं, और परमात्मा ने यह सूचित करता है कि वे समस्त जीवों के नियंता हैं, इसलिए अपने में पूर्ण तथा सर्वशक्तिमान परम पुरुष के भीतर हमें भौतिक माया शक्ति का कोई दखल नहीं देखता। अनुवाद दोहराइए। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर इस सृष्टि को अपने रूप अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। तो वरुण ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये घटना ब्रज 84 कुछ परिक्रमा जो लोग किए होंगे वो स्थान देखे होंगे। जब परिक्रमा चीर घाट से आगे बढ़ती है तो भय गांव है, गांव का नाम है भय गांव। कितने लोग परिक्रमा किए हैं तो देखे होंगे भय गांव। वो गांव से के नजदीक में ही जमुना जी बहती हैं, और उसी स्थान पर यह घटना घटित हुई थी कि नंद महाराज एकादशी का उपवास किए थे, द्वादशी को स्नान करने के लिए जमुना जी में गए थे। तो भय गांव के समीप से ही वो जमुना जी बहती हैं, वहाँ बहुत तेज धारा है। भय गांव इसलिए कि सबको भय हो गया था, जब नंद महाराज बहुत झलफला है अर्ली इन द मॉर्निंग जमुना जी में स्नान करने गए थे। हमारे यहाँ झलफला है बोलते हैं, बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत जल्दी जल्दी स्नान करने गए थे। कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि अर्धरात्रि में गए थे, लेकिन यहाँ लिखा है कि इन ऑस्पिशियस टाइम अशुभ बेला में स्नान करने गए थे। एकादशी पारण करना था तो मतलब तो ज्यादा जल्दी तो नहीं गए होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में ही गए होंगे। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एकादशी पारण करने एकादशी ब्रेकिंग करने का बहुत कम ही मुहूर्त रह गया था, तो मतलब तो सुबह ही गए होंगे, सूर्योदय से थोड़ा पहले गए होंगे स्नान करने। कुछ ही समय था एकादशी ब्रेक करने के लिए, तो गए तो उनके साथ में कुछ और भी ग्वाले गए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं पीछे का श्लोक में कि नंद महाराज जब स्नान करेंगे उनके साथ अन्य ग्वाले भी थे। जब जमुना जल में स्नान करने गए वापस नहीं आए जो साथ में थे देखी नंद महाराज नहीं आए, तो बहुत तो कोशिश की वो लोग लेकिन फिर भी पता नहीं कर पाए। तो बहुत लोग रोने लगे, जोर जोर से आवाज करने लगे, चिल्लाने लगे। कोई आदमी जब स्नान करता है ना तो साथ वाला डूब जाता है, तो लोग नहीं प्रयास करते हैं निकालने के लिए, आवाज देते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो वहाँ बहुत गहरा पानी भी है। एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा वहाँ पर जब गई तो वहाँ अनाउंस हुआ कि जो लोग बहुत अच्छा तैरते होंगे वही लोग जाएंगे, नहीं तो नाव से ही जाएंगे, नाव से ही जमुना क्रॉस करना होता है। तो अनाउंस हुआ था कि जिनको तैराकी नहीं आता होगा वो नहीं प्रयास करेंगे जाने के लिए। तो कुछ लोग तैर कर पार होना चाहते थे, तो दो तीन लोग डूबने लगे वहाँ वहाँ बहुत गहरा पानी है, बहुत करंट बहुत तेज है, दो तीन लोग डूबने लगे। तो एक आदमी बहुत दूर डूब रहा था तो ऐसे ऐसे कर रहा था, कोई बुरा तो ऊपर तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, दूर दूर चला गया था। तो एक एक भक्त कहा कि वो कुछ हेल्प मांग रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। एक रशियन भक्त था, बहुत बड़ा स्विमर था वो जा करके स्विमिंग करके उसको ले आया डूबते हुए, अपने पीठ पर चढ़ा करके डूबते डूबते ऐसे बाहर भीतर ले। तो घाट आज ही बहुत खतरनाक है, तीन तीन लोग डूब रहे थे। तो एक लोगों को तो नाव ने ये किया, नाव थी ही, और एक भक्त डूब रहा था तो उसको भी एक भक्त जो है, तो वहाँ बहुत आज भी धारा बहुत तेज है और गहरा पानी है। तब नंद महाराज जब नहाने के लिए गए तो पानी में गए तो वापस आए नहीं, तो साथ में जो भी उनके गए थे को बहुत भय हो गया, चारों तरफ भय का वातावरण हो गया। इस गांव का नाम भय गांव हो गया, गांव का नाम ही है भय गांव। चारों तरफ भय हो गया कि नंद महाराज आए ही नहीं, सारे ग्वाले लगे रोने। आवाज सुन करके कृष्ण बलराम आए, समझ गए, तो कृष्ण समझ गए कि नंद महाराज को वरुण के अनुचरों ने ले गया है। तो जमुना के जल में गए और जमुना के जल होते हुए वरुण के लोक में गए, और वरुण के लोक में गए तो वहाँ वरुण अपने सभासद लोगों के साथ बैठे थे, और बहुत अच्छे आसन में नंद महाराज भी बैठे थे। नंद महाराज को भी बहुत अच्छा आसन दिया गया था, और कृष्ण आए तो सभी लोग बहुत स्वागत किए, वार वेलकम किए, बहुत गर्म स्वागत, गर्म जोशी से स्वागत हुआ। और वरुण अपना बड़ा सौभाग्य का बखान करने लगे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं। बहुत प्रकार से पूजा किए, अर्चना किए, और इस तरह से क्षमा याचना भी करने लगे कि हमारे मूर्ख अनुचरों ने नंद महाराज को ले आया, ये बड़ी भूल है। बार बार इस बात के लिए अफसोस जाहिर कर रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे। नंद महाराज अपना व्रत द्वास्ती को तोड़ने के इच्छुक थे, और उसमें अब केवल कुछ ही क्षण शेष थे, अतः वे प्रभात होने के पूर्व अशुभ समय में स्नान करने के जल में प्रविष्ट हुए थे। अशुभ समय में वरुण के जिस सेवक ने नंद महाराज को पकड़ा था उसे असुर कहा गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह असुर था। ऐसे नंद महाराज कोई गलत नहीं किए थे, समय ऐसा नहीं कि असमय था या 2 बजे या 12 बजे रात्रि को निषेध है स्नान करना, मध्य रात्रि में नदी में स्नान करना निषेध है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही गए थे। तो इस कार्य को जो किया था उसको असुर कहा गया है, वो असुर व्यक्ति था जिसने नंद महाराज को बंदी बनाया था, जिसके कारण अस्पष्ट है। पहले तो वह सेवक इस बात से अनजान था कि नंद महाराज परम सत्य के लीला के रूप में, परम सत्य के लीला के रूप में पिता हैं। यह नहीं जानता था कि नंद महाराज उस परम सत्य भगवान के लीला में पिता बने हैं, लीला पिता हैं, लीला के रूप में पिता हैं। नंद महाराज परम सत्य के लीला के रूप में पिता हैं। दूसरे, नंद महाराज शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, अतः वरुण के सेवकों को इस बात के लिए उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था, यशु बेला में यमुना स्नान कर रहे थे। इसी अध्याय में आगे चलकर वरुण कहते हैं, अजानता माम के न मुढ़े न, मेरे अज्ञानी नौकर ने यह किया क्योंकि वह मूर्ख था। वरुण कहते हैं, यह मूर्ख नौकर कृष्ण या नंद महाराज या भगवत भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता था। इस तरह से नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के समक्ष वरुण इस तरह से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो सारांश यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस घटना का सारांश यह है कि भगवान कृष्ण वरुण को अपना दर्शन देना चाहते थे और साथ ही अन्य उपदेशात्मक कार्य संपन्न करना चाहते थे। इस अद्भुत लीला का उद्घाटन आगे होगा। इस घटना को भगवान भी चाहते थे कि ऐसी घटना हो कि लोग भगवान के ऐश्वर्य को समझें, ग्वाले भी आनंद महाराज भी, जो लोग केवल अपना पुत्र मानते थे या अपना मित्र मानते थे या अपना सजातीय मानते थे या अन्य गोप लोग अपना एक चमत्कारी मित्र मानते थे, तो इस घटना से उन लोगों को भी शिक्षा देना चाहते थे भगवान। शिवनंद महाराज भी नहीं जानते थे, वही जानते थे कि हमारा लड़का है। तो सारांश से है कि भगवान भी चाहते थे कि एक ऐसी घटना घटे जिससे लोग समझें। भगवान इस तरह की कई घटनाएं कई चमत्कार दिखलाते हैं, जैसे दावा नलपान, कालिये मर्दन, गिराज धरन, ब्रह्मांड मुख में मुखार बिंद में ब्रह्मांड का दर्शन कराना, 6 दिन में पुतना का उद्धार करना, यमलार्जुन का उद्धार, सकट भंजन, तृणावर्त, ऐसे अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। फिर भी ग्वाले, यहाँ तक कि नंद महाराज भी यही समझते थे कि बहुत चमत्कारी बालक है, यह नारायण की बड़ी कृपा है, देवताओं की बड़ी कृपा है, यही समझते थे। बहुत जाते थे, बहुत अपना दिमाग चलाते थे, तो इतना तक जाते थे कि नारायण की बहुत बड़ी कृपा है, ये नहीं जानते थे कि नारायण के भी सर्वदेवो मयो हरि, सारे देवताओं के मूल हैं, भगवान हैं, इतना तक नहीं जाते थे वे लोग। यही समझते थे कि देवताओं की बड़ी कृपा है यानी तो नारायण की बड़ी कृपा है, कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, पूर्व जन्म का बहुत बड़ा जोगी होगा, इसलिए नारायण की कृपा है। लेकिन यहाँ तक नहीं जाते थे कि ये स्वयं भगवान है। तो भगवान इस घटना से नंद महाराज के साथ साथ में उनके जो सखा थे, उनके मित्र थे, उनको भी यह उपदेश देना चाहते थे, प्रकारांतर से उनको यह बताना चाहते थे कि जो आप समझते हो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। लोग बोलते हैं ना कि जो मुझे आप जो समझते हो मैं वो नहीं हूं। मैं उससे बहुत आगे हूं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, आप मुझे जो जानते हो जिस रूप में वो रूप में मैं नहीं परिभाषित हूं। कभी कभी लोगों को गलत फहमी हो जाता है, सामान्य लोगों के प्रति भी, कभी कभी लोगों को गलत फहमी हो जाता है अपने वरिष्ठ लोगों के प्रति भी, होता है ना गलत फहमी, बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी में ही ना बोलते हैं। तो एक बार की घटना है कि जब गोरखपुर में महाराज मिले थे प्रभुपाद जी से, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, तो जबकि दूर से प्रभुपाद जी का साक्षात्कार हुआ था वाराणसी में, लेकिन जब गोरखपुर में महाराज प्रभुपाद जी को देखे वॉकिंग करते हुए, और केवल एक लुंगी पहने थे, ऊपर का उत्तरीय वस्त्र नहीं था, एक कमर में वस्त्र था, लुंगी पहने थे, वॉकिंग कर रहे थे। तो महाराज जी जाकर पूछे कि मुझे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से मिलना है। वो नहीं समझे कि यही प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी कहे कि क्यों मिलना चाहते हो? तो उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो क्यों गुरु मानते हो? आ तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को के विषय में जानते हो? कौन कहता हाँ वो स्वयं कृष्ण ही हैं। तो प्रभुपाद जी कहे कि नहीं नहीं वो तो भक्त हैं। तो बोले नहीं भगवान हैं, आप नहीं हो तो भक्त हैं। बोले चुप रहिए, अब नहीं जानते हैं, मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ा हूँ। महाराज चैतन्य चरितामृत पढ़ लिए थे पहले ही, पोदार जी से सान्निध्य बहुत पहले से था, आना जाना। तो एक बार पोदार जी कहे कि आप चैतन्य चरितामृत बंगाली में ग्रंथ है, आप पढ़िए। तो गौर कृष्ण महाराज कहते कि दो तीन दिन में ही महाराज बंगाली बंगला वहाँ पढ़ना सीख लिए और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़े थे भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार के कहने से। पोदार जी ने प्रेरित किया, एक बहुत सुंदर ग्रंथ है बंगाली में चैतन्य चरितामृत, तो वहीं तीन दिन में बंगला पढ़ना सीखे थे। ऐसे बिहार में बहुत सारे भक्त लोग हैं दो दिन में बंगला सीख जाते हैं, कई लोग हैं दो दिन में बंगला पढ़ना सीख गए हैं। हम अभी तक प्रयास नहीं किए हैं पढ़ने के लिए। कई लोग सीख गए हैं बिहार में, और ऐसे भी श्याम सुंदर एक भक्त हैं, वो बंगला पढ़ाना संस्कृत पढ़ाना सिखाते हैं। तो जब महाराज कहे कि चुप रहिए, अब नहीं जानते हैं, मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ाऊं, तो प्रभुपाद जी बहुत हंसे जोर से हंसे। तो बाद में कहे कि वो जिनसे मिलना चाहते हो थोड़ी देर में उनका क्लास यहाँ होगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ प्रवचन होगा जिनसे मिलना चाहते हो। तो बाद में कुछ समय के बाद देखे कि वही व्यक्ति व्यास आसन पर बैठे हैं, वही व्यक्ति जिनको महाराज डांट दिए थे कि चुप रही अब नहीं जानते। तो प्रवचन के बाद महाराज कहे कि महाराज कह रहे थे कि मैं भगवान पहले कहता था, आज भी बहुत सारे लोग महात्माओं को भगवान कहते हैं, भगवान को भी भगवान संबोधित करते हैं, भक्तों को भी बहुत जगह ऐसे लोग भगवान कहते। तो महाराज कहे कि भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं तो आपको डांट दिया। तो प्रभुपाद जी फिर बहुत हंसे, बोले कि मैं यही जानना चाहता था कि तुम चैतन्य महाप्रभु के विषय में तुम्हारी क्या अवधारणा है। तो कभी कभी ये तो ऐसी गलतफहमी तो होती है ना, कभी कभी आदमी कभी कभी गलतफहमी में हो जाता है। तो भगवान कृष्ण के विषय में कभी कभी जान करके भी लोग फिर भुला देते थे। जैसे माँ यशोदा ने मुख में ब्रह्मांड दर्शन किया तो कुछ समय ऐसा लगा कि ये कोई महान विभूति है, कोई महान देवता है, कोई सिद्ध लोक का वासी, जन लोक तप लोक महर लोक सत्य लोक यक्ष किन्नर गंधर्व या राक्षस हो सकता है, या कोई भूत प्रेत का प्रभाव हो सकता है। माँ यशोदा ने सोचा कोई दैवी प्रकोप होगा, या कोई मायावी का प्रभाव होगा, या कोई प्रेत का प्रेत बाधा होगा कि ऐसा दिखाई दे रहा है, या मैं स्वप्न देख रही हूँ। माँ को अपने पर विश्वास नहीं होता कि मैं जगी हूँ कि स्वप्न में हूँ, या कोई जादू हो रहा है। लेकिन वो जैसे ही तमाशा खत्म हो गया, जैसे ही वो सीरियल खत्म हो गया, फिर माँ ये कि नहीं ये हमारा लड़का है, फिर माँ की वो धारणा फिर खत्म हो गई, नहीं नहीं ये तो बालक है। तो नंद महाराज जब वरुण के लोक में थे और भगवान श्री कृष्ण जब वहां गए, तो वरुण अपने सारे अनुचरों समेत कृष्ण की बहुत स्तुति किए, बहुत प्रकार से पूजा किए और नंद महाराज देख रहे थे। तो देखकर मन ही मन सोचे कि ये बालक जो है, जिसको मैं अपना बालक समझता है, तो कुछ और है। तो सारे वरुण देव जिसके चरण का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, जिसके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं और बार बार याचना, क्षमा याचना कर रहे हैं। तो नंद महाराज के अंदर भी ये जो धारणा थी वो खत्म हो गई, ये हमारा पुत्र है। कैसे अर्जुन के मन में धारणा थी कि हमारा मित्र है, हमारा मातुलेयम, हमारे मामा का लड़का है, लेकिन विराट रूप को देखे तो उनकी धारणा समाप्त हो गई। तब कह नहीं, ये भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। अब वरुण इस तरह से अपने शब्दों से कह भी रहे थे कि आप ब्रह्म है, परमात्मा है, सारे जगत का आप सृजन करते हैं। तो स्तुति कर रहे थे वरुण, नंद महाराज बड़े ध्यान से देख रहे थे। तब वरुण देव स्तुति कर रहे हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। नमस्तुभ्यं मने आपको हम नमस्कार करते हैं, भगवते हे भगवान, सदे स्वर्ग परिपूर्ण ऐश्वर्य स समग्र, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य है, आप आध्यात्मिक जगत के भी, भौतिक जगत के भी, माया सृष्टि के भी कारण है, फिर भी माया आप का आप में लेस मात्र भी प्रभाव नहीं होता है, माया आपको कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती है। ये माइक जगत तीन गुणों से निर्मित है, लेकिन फिर भी आप तीन गुणों से परे निर्गुण हैं, आप परम सत्य विशुद्ध सत्य गुण में निवास करते हैं। यद्यपि ये भौतिक जगत भी आप में ही निवास करता है, सारा जगत आप में है, सारा ब्रह्मांड भगवान के विराट शरीर में है। ये भौतिक जगत भी, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व, सारे तत्व हैं, फिर भी भगवान उसे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे सूर्य जो है गंदगी को भी शुद्ध कर देते हैं, मल मूत्र को भी सुखा देते हैं, खारे जल को भी पी करके उसको सुंदर बना देते हैं, गटर के नाली के पानी को भी वाष्पित करके मधुर बना देते हैं, लेकिन फिर भी उसे प्रभावित नहीं होते हैं। सूरज में फिर भी कोई दोष नहीं आता है, सूरज उस दोष से दूषित नहीं होते हैं। यद्यपि जितने भी वस्तुएं हैं, अशुद्ध वस्तुओं को भी सूर्य ही शुद्ध करते हैं। वर्षे बरसात में कीचड़ है, पंक है, दूषित जल है, उसको भी शुद्ध करते हैं, वाष्पित करते हैं, समुद्र के खारे पानी को भी पी करके मधुर जल के रूप में वर्षा करते हैं। क्षारम जलम बारी मुचह पिबंती तदेव कृत्वा मधुरम बमंती। यद्यपि समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते हैं, बहुत खारा होता है, पीने का प्रयास करेंगे तो पी नहीं पाएंगे, बहुत खारा होता है, लेकिन सूर्य उसको पी करके क्षारम जलम बारी मुचा पिबंती, बारी मुचा माने सूर्य, सूर्य को बारी मुचा कहते हैं और उसको पी जाते हैं, चाहे गटर का पानी हो चाहे समुद्र का पानी हो, और पी करके उसको मधुरम बमनती, फिर मधुर के रूप में बमन कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। बमन माने उल्टी होता है, जितना भी दूषित पानी है उसको वाष्पित करके या फिर उसको बमनती, बहन कर देते हैं, या बमन माने जैसे कोई उल्टी करता है ना, उसे उल्टी कर देते हैं और मधुर हो जाता है वो। जितना भी दूषित वस्तु है, सूर्य अपनी किरणों से उसको शुद्ध कर देते हैं। उसी तरह भगवान में सारा जगत है, ये त्रिगुणमयी जो सृष्टि है, इसके जो अवयव हैं पंच महाभूत, पंच तन मात्रा, पांच ज्ञान इंद्रियां, उसके तन मात्रा, पांच कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार चेतना, ये जो भौतिक तत्व हैं, इससे निर्मित जो प्रधान है, महत्त्व है, इसके द्वारा जो विभिन्न सृष्टि है, चर अचर अंडज पिंडज स्थावर जड़ जंगम, ये सब भगवान में है, सब भगवान के विराट शरीर में है। अर्जुन विराट रूप का दर्शन करके पिता शिलोकस्य चराचरस्य, चर अचर जितने भी वस्तुएं हैं सब भगवान में हैं। यहां तक कि गर्भ समुद्र से लेकर के ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के सबसे अधोतल में गर्भोदक साई विष्णु हैं और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं इस ब्रह्मांड में, और बीच में भी जितने लोक लोकांतर हैं, जितने अनंत कोटि जीव हैं, सब उस भगवान के शरीर में ही हैं। हम लोग ही भगवान के शरीर में ही बैठे हैं, विराट शरीर में। माँ जशोदा देखी भगवान के विराट शरीर में कि बैठी है, माँ ने जब मुख में ही भगवान के विराट रूप को देखा तो देखी सारा ब्रह्मांड को, निम्न लोक को भी, तल तल बीतल नीचे के लोक को भी, ऊपर के लोक को भी, जन लोक तप लोक महर लोक सब देख रही थी, सूर्य को चंद्रमा को सब देख रही थी, भारतवर्ष भी, भारतवर्ष में ब्रजमंड मथुरा मंडल गोकुल 84 खंभा नंद भवन देख रही, उसमें अपने आप को भी देख रही थी और बाल कृष्ण को भी देख रही थी। मतलब भगवान के विराट शरीर में सारा कार्य संपन्न हो रहा है, सारे जीव जो है भगवान के विराट शरीर में ही सब कुछ कार्य कर रहे हैं, सारा जगत भगवान में वैसे ही है जैसे धागे में मणि टिका रहता है, सूत्रे मणि गणा इव, जैसे सारा फूल जो है ये धागे में है, धागा नहीं दिखाई देता है, धागा को हम नहीं देखते हैं ना, माला दिखाई देता है, उसी तरह सारा जगत अंडज पिंजे सारा जगत के जीव सारे चीज भगवान में ही गुथे हुए हैं, भगवान नहीं दिखाई दे, सबको भगवान धारण किए हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, वैसे ही जैसे माला में धागा नहीं दिखाई देता है, धागा अंदर है लेकिन ये फूल को धारण किया है धागा ही, उसी तरह सारे जगत को भगवान ही धारण किए हैं अपने विराट शरीर में, फिर भी हम उनको देख नहीं पाते हैं। वैसे जैसे आंख से सब कुछ हम देखते हैं लेकिन आंख को नहीं देख पाते हैं, आंख को कोई देखता है अपने आंख को नहीं देख, लेकिन आंख के द्वारा ही हम सब कुछ देखते हैं, उसी तरह भगवान सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ के वही स्रोत हैं लेकिन पीछे हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, सब कुछ के वही कारण हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे आंख से हम सब कुछ देखते हैं कि आंख अपने आप को नहीं देख पाती है, तो कोई के दर्पण में तो देखते हैं, दर्पण में रिफ्लेक्शन देखेंगे, आंख को नहीं देख पाते हैं। जिन आंख इन सब देखी हैं आंख न देखी जाए, जिस आंख के द्वारा सब कुछ देखते हैं आंख को नहीं देख पाते, जो देखने का जो दिखाने का कारण है, सब कुछ को दर्शाता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे गुरु को भी नमस्कार है जो अखंड मंडलाकारम हर इस ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त हैं, चर अचर हर चीज में व्याप्त हैं, व्याप्तमेन चराचरम, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। कोई विशिष्ट गुरु या भगवान की कृपा होती तब कोई देखता है। उसी तरह नंद महाराज जब देखे इस घटना को, कि वरुण प्रणाम कर रहे हैं हमारे बेटे को, जिसको अपना बेटा मानते हैं उसको सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं। तब समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। कैसे अर्जुन समझ गए कि सारे देवता लोग विराट शरीर में प्रणाम कर रहे हैं, सारे देवता विराट शरीर में प्रणाम कर रहे हैं। तब अर्जुन को समझ में आया कि ये भगवान है, रथ के कोचवान नहीं है, भगवान है। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड मिशम। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर कमलासनस्थम, स्वयं ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे हैं, सारे ऋषि हैं और जितने भी श्रेष्ठ सर्प हैं। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, जितने भी वरिष्ठ जीव थे, लोकपाल प्रजापति ऋषि सब लोग प्रणाम करे थे। ऋषिश्च सर्वानुरुगाश्च दिव्यान, दिव्य सर्प शेषनाग कहिए और भी जो श्रेष्ठ सर्प, सब लोग कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। अजानता माम के न मूढ़े मूढ़ेन अरकार बेदिना, आनी तो यम तो पिता तद भावान छत्मरहत। आगे के श्लोक में वरुण जी के यहाँ पर बैठे हुए वरुण कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए आपके पिता मेरे एक मूर्ख अज्ञानी नौकर द्वारा मेरे पास लाए गए हैं। जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता था, कृपा करके हमें क्षमा कर दें। वरुण देवता करेंगे मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके पिताजी यहाँ बैठे हैं, हमारा मूर्ख अज्ञानी सेवक इनको ला दिया है, आज इसके लिए हमें आप क्षमा कर दीजिए। अयम अर्थात यह जो यहाँ है अस्पष्टता सूचित करता है कि जब वरुण बोल रहे थे तो कृष्ण के पिता नंद महाराज वहाँ उपस्थित थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वरुण ने वास्तव में श्री नंद को रत्न जटित सिंहासन पर आसीन कर रखा था, बहुत स्वागत पहले से ही किए थे, रत्न जड़ी सिंहासन पर बैठाए थे। वो जान गए थे कि नंद महाराज के पिता हैं, इस घटना को पहले से ही वो मालूम था कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण के पिता हैं, तो उनको रत्न जड़ी सिंहासन पर बैठाए थे और स्वयं उनकी सादर पूजा की थी और पूजा भी कर चुके थे, उनका पूजा भी किए थे। वो जान गए थे कि ये तो कृष्ण के पिता हैं, नंद महाराज हैं, बड़ी भारी भूल हो गई है। एक तरह से नंद महाराज का सूर्योदय के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित था। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सूर्योदय के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित था, नंद महाराज का गलती नहीं था, तभी ना वरुण देवता क्षमा याचना करें कि हमारा जो अनुचर ये मूर्ख था, असुर था, इसको विचार नहीं करने आया। एक तरह से नंद महाराज का सूर्योदय के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित था। शिलजीव गोस्वामी ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक की टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, विशेषतया छोटी होने के कारण एकादशी केवल 18 घंटे की थी, अतः सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे। एकासी 18 घंटे की थी। कोई कोई छोटा समय में एकासी का ही होता है, पारण करना पड़ता है बहुत जल्दी, तो 18 घंटे की थी। अतः सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे। सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे, मतलब कितना
हो जाएगा। 6 घंटा बीत चुका था सूर्योदय के पहले ही, द्वासी मतलब 2 बजे, 2 बजे के बाद ही द्वासी का पारण का मुहूर्त आ गया था। तभी ने प्रभुपाद लिखते हैं सूर्योदय के पूर्व ही द्वासी के 6 घंटे बीत चुके थे, 6 घंटा बीत चुका था। कोई ऐसा रेयर होता है, हैं? ऐसे तो 12 बजे मान सकते हैं कि 12 बजे से ही पारण का समय हो गया था, माने छोटी एकादशी थी 18 घंटे की। ऐसा होता होगा, लाखों वर्ष में होता होगा कभी, ऐसा हम लोगों के पीरियड में नहीं आएगा ऐसा। कभी कभी लाखों हजारों वर्षों के बाद ऐसे एकादशी का पारण चार्ट मेंशन होता है, इसलिए अर्धरात्रि में स्नान करने गए होंगे। लेकिन नियमतः शास्त्रिक विधि से एकादशी तो ब्रेक करना है, तो इसमें गलती क्या है? शास्त्र कहता है कि द्वासी में ब्रेकिंग के अंतराल में ही हमें उपवास तोड़ना चाहिए, तो नंद महाराज शास्त्रानुसार सही थे, गलत नहीं थे। इसीलिए वरुण देवता अपने उस सेवक के कार्य की भर्त्सना कर रहे थे और बार बार क्षमा याचना कर रहे थे कि हमारे उस मूर्ख अनुचर ने इस तरह से आपके पिता को बंदी बना कर लाया है, ये इस भूल के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। क्योंकि सेवक का जो गलती है वो स्वामी का ही माना जाता है ना, सेवक ने जो गलती किया है तो हमारी ही गलती है, मैं इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। चूंकि सूर्योदय होने पर व्रत भंग का सही समय बीत चुका होता, इसलिए नंद महाराज ने अन्यथा अशुभ समय में जल में प्रवेश करने का निश्चय किया था। इसलिए एकादशी पारण को ध्यान में रख करके ही उस अशुभ बेला में जमुना जी में प्रवेश किए थे। तो इन सब घटनाओं को नंद महाराज के सामने सब घटित हो रही थी, ये जो कन्वर्सेशन है कृष्ण और वरुण का, तो नंद महाराज बड़े सावधानी से देख रहे थे, सुन रहे थे, कह रहे हमारा लड़का इतना नाम किया है, इतना प्रभावशाली है, लोग कहते हैं बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। तो इतना नाम किया हम तो पता ही नहीं है, घर के जोगी जोगड़ा लोग बोलते हैं, बाहर के जोगी सिद्ध, अपने घर में ही कोई बड़ा आदमी है ना तो उसको लोग नहीं समझते हैं, घर के मुर्गी दाल बराबर। नंद महाराज और ग्वाले यही समझते थे कि ये भी एक बालक है, नहीं समझते थे प्रभाव को। तो नंद महाराज की आँख खुल गई कि वास्तव में कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है, ये तो कोचवान नहीं, ये तो भगवान है। अर्जुन कैसे समझ गए भगवान है, हमारे रथ के कोच नहीं है तो भगवान है। तो नंद महाराज को भी ये हो गया कि ये भगवान है। जब वापस आए तो इस बात को ग्वालों से, अपने संबंधियों से, बुजुर्ग ग्वालों से कहने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, सारी घटनाएं कह रहे थे, जिससे मिलते थे कि ये बालक बहुत चमत्कारी है, वहां तो सारे देवता इसकी पूजा कर रहे थे, ये भगवान है। आगे इसको हम सुनेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, ताइगोर प्रेमानंदे।
वंदेहं श्री गुरु